मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैंने आज के इस ऑडियो गाइडेंस का जो विषय रखा है वो रखा है कि प्रीलिम्स के लिए आवश्यक निर्देश। डेफिनेटली ये तो है ही कि यदि हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते तो मेंस और इंटरव्यू का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आपके प्री के प्रिपरेशन के लिए और खासकर एग्जाम हॉल तक आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन बातों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा और इसी को लेकर के ये ऑडियो गाइडेंस तैयार किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि आप सब क्लास में आए थे, उस समय हमने प्रीलिम्स के बारे में भी काफी बातें की थी, सब सब्जेक्ट को एनालाइज किया था, क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया था और इसके बाद भी डेली ऑडियो गाइडेंस में भी मैंने प्री के तैयारी के बारे में, प्री के क्वेश्चंस के फॉर्मेट के बारे में इससे पहले भी आपसे चर्चा मैं कर चुका हूं और वो सब अभी जबकि मैं चर्चा कर रहा हूं मेरे ध्यान में है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि उनसे मैं थोड़ी से हटकर आप लोगों से कुछ स्पेसिफिक बातें कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपने इस आज की बातचीत की शुरुआत करूं, आप सबको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपके प्री का जो पेपर है वो बहुत अच्छा बने और आप सबको उसमें बहुत अच्छी और बेहतर सफलताएं प्राप्त हों। मित्रों, एएफई के पूरी टीम की ओर से आप सबको शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी कि वह आपको इसमें सफलता के लिए पूरी पूरी शक्ति दे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस बात से कि मेरे आप सब जो ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं उसमें तीन तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले वे स्टूडेंट होंगे जिन्हें अभी 2015 के प्री में बैठना ही नहीं है, उनके लिए फिर कोई बात नहीं, कोई ऐसे निर्देश नहीं है, वो अपनी तैयारी को एज इट इज रखेंगे जैसा कि वो अभी तक करते चले आ रहे हैं। दो तरह के जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं उनमें एक स्टूडेंट इस तरीके के होंगे, एक वर्ग के, जिन्होंने बिल्कुल फैसला किया हुआ है कि वो एग्जाम में बैठेंगे ही। डेफिनेटली दूसरे तरह के वे स्टूडेंट होंगे दूसरे वर्ग में, जो अभी भी द्वंद में है कि वो एग्जाम में बैठें या ना बैठें। मित्रों, एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, वो ये, पहले भी मैं कहता रहा हूं कि आप केवल अपने प्री की तैयारी के आधार पर ही प्री एग्जाम में बैठने का फैसला बिल्कुल मत करें। आप देखें कि मेंस की आपकी तैयारी क्या है। अगर आपको लगता है कि मेंस की भी आपकी तैयारी हो चुकी है या आपकी कमांड में है, आप उसकी तैयारी कर लेंगे क्योंकि दिसंबर के बिगिनिंग में मेंस होते हैं, तभी आप प्री में बैठे। अदरवाइज मेरी सलाह है कि आप अपने चांस को यूं ही जाया न करें, यूं ही बर्बाद न करें। जहां तक फ्रेंड्स आपके अनुभव का सवाल है कि हमें इसमें अनुभव मिल जाएगा एक बार हम बैठ जाते हैं, देखिए अनुभव तब मिलता है, सही ठोस अनुभव जिसको हम कहते हैं, जबकि हम बहुत अच्छी तैयारी करके बैठते हैं, अदरवाइज उस अनुभव का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि जब आप बैठने न बैठने का निर्णय लेंगे तो फिर ये भी देखें, केवल ये सीधी सीधी तैयारी से ही जुड़ी हुई बात नहीं है, नो डाउट कि तैयारी एक बहुत अहम हिस्सा होता है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि आपकी एज कितनी है, आपको कितने अटेम्प्ट अभी और देने बाकी हैं, तो वो कितने आगे की संभावनाएं बनती हैं। बहुत ऐसी स्थिति में होते हैं जो आगे बैठ ही नहीं पाएंगे, तो इन सबको भी लेकर आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सच पूछे तो मेंस की तैयारी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो रियल एग्जामिनेशन है वो मेंस के एग्जामिनेशन ही होते हैं। अब फ्रेंड्स, जो एक महीने का जो वक्त बचा हुआ है उसके लिए मैं अब आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर और अपने ऑब्जर्वेशन और थॉट्स के आधार पर भी। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि अब आपको चाहिए कि चूंकि एक महीने का वक्त बचा हुआ है तो अब आप पूरी तरह से प्री के प्रिपरेशन के लिए अपने आप को फोकस करें। प्री के प्रिपरेशन में फोकस करें इसका मतलब है कि अब आप मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी है उसको ड्रॉप कर दें। आपने देखा होगा कि इससे पहले मैं लगातार ये कहता रहता था कि साइमल्टेनियसली बिल्कुल समानांतर तरीके से आपको मेंस की भी तैयारी करते रहनी चाहिए। अब आप उसे ड्रॉप कर दें और एक महीने पूरे के पूरे इस वक्त को आप प्री सेंटर्ड कर दें, प्री केंद्रित पूरी तरीके से कर दें, राइट। लेकिन अखबार पढ़ना, अगर आप ऑडियो सुनते हैं तो ऑडियो सुनना और न्यूज सुनना ये बिल्कुल भी बंद न करें। उसके दो कारण है फ्रेंड्स। नंबर एक कि आपको मेंस भी देना है, दूसरा आप देखेंगे कि अभी भी जो आप इस तरह से चीजें न्यूज सुनते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, ऑडियो सुनते रहेंगे तो ये आपके प्री के एग्जाम में भी आपकी मदद करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत से आपके प्रश्नों के हल करने में न्यूज की ये जानकारी आपकी मदद करेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी न्यूज ऐसी होती है, ज्यादातर न्यूज ऐसी होती है जो पिछले समय से चली आती है। फिर से जनरली देखा गया कि प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग 1.5-2 महीने पहले तक के क्वेश्चंस होते हैं, और 1.5-2 महीने पहले के जो क्वेश्चंस होंगे वो घटनाएं अभी तक किसी न किसी रूप में चलती ही रहती हैं, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल नई और ताजी रहेंगी। इस लिहाज से आपको चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज सुनना, ऑडियो सुनना इसको कंटिन्यू रखें और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी को अब बिल्कुल ड्रॉप कर दें। पहली बात तो फ्रेंड्स ये है। अब दूसरी बात है कि अब आप अपनी तैयारी का स्वरूप क्या रखेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा है ये प्रकृति का नियम है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि जब मकान बनाए जाते हैं या जब मीनारें बनाई जाती हैं या आप पहाड़ों के स्वरूप को देख लीजिए कि नीचे का धरातल बहुत चौड़ा होता है और फिर वो धीरे 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 पतला होता 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 ऊपर जाकर के एक चोटी का रूप ले लेता, एक शिखर का रूप ले लेता है, यानी कि धीरे धीरे उसकी उसका जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाता है कम होता जाता है। हमारी तैयारी का स्वरूप भी ऐसा ही होना चाहिए। फ्रेंड्स अभी तक आप बिल्कुल निर्द्वंद होकर के हर एक विषय के बारे में पढ़ रहे थे, आपकी कोशिश होती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर लें, ज्यादा से ज्यादा विषयों के बारे में जान लें, लेकिन अब आपको अपने इस सरफेस को शंकुक आकार देना है, यानी कि उसके धरातल को अब कम चौड़ा करना है। फ्रेंड्स ये आप मान करके चलिए कि जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा है इसकी जो सफलता है डेफिनेटली उसमें नॉलेज का अपना रोल है, अगर हम प्री को मान करके चले तो नॉलेज का अपना रोल है, लेकिन जहां लड़ाई होती है वहां स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। स्ट्रेटजी मतलब आप रणनीति, आप किस रणनीति के तहत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप अपनी रणनीति बना सकें इस लिहाज से आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, एक दो चीजें नहीं बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। मित्रों रणनीति के बारे में, अब आपकी तैयारी की रणनीति क्या होगी देखिए उसके बारे में मैं अब आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सच पूछिए तो काफी सीमा तक चौंकाने वाली भी है, वो ये है कि इस बार 2015 के अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखिए कि कट ऑफ मार्क्स क्या है। बड़ी विचित्र सी चीज देखने को मिल रही है कि जो प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क्स हैं वो पिछले साल की तुलना में लगभग 8-9% कम है, लेकिन जो मेंस के कट ऑफ मार्क्स हैं वो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, जनरल कैटेगरी का एक उदाहरण देता हूं, पिछले साल में प्रीलिम्स का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 241 था, 242 जिसके परसेंटेज आते हैं लगभग 60% कह लीजिए, 60.25%। ठीक है, अंतर क्या हुआ है इस बार के कट ऑफ मार्क्स में, अगर हम पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स में अंतर देखें तो थोड़ा सा अंतर यह हुआ है फ्रेंड्स कि पिछले साल जो कट ऑफ जो टोटल मार्क्स थे वो 400 के थे जिसमें 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी थे, इस बार वो इंग्लिश के क्वेश्चंस उन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिए हैं और 385 में ही कट ऑफ मार्क्स उन्होंने निकाले हैं। तो ठीक है 385 में कट ऑफ मार्क्स 205 यानी कि 15 से थोड़ा सा कम हो गया है, 15 में 7-8 नंबर और आ जाते तो हम इसको 214-215 तक ले सकते परसेंटेज वाइज अगर हम जाएंगे तो, फिर भी पिछले साल की तुलना में ये काफी कम है। अब आगे क्या हो सकता है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब अगर आप रणनीति को लेकर के चलेंगे तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो सी सेट का पेपर है, सी सेट के पेपर में बहुत हाई स्कोर होते थे। जो स्टूडेंट होते थे, खासकर जो मेंस के लिए क्वालिफाई करते थे, देखने में आया कि उसमें इंजीनियरिंग, साइंस बैकग्राउंड, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। और उनके ज्यादा होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि वो सी सेट के पेपर में बहुत हाई स्कोर करते थे। पता लगा कि उधर 75% 80% नंबर उधर ला रहे हैं और इधर इनके बहुत कम नंबर, 35% 40% नंबर है, तो दोनों को मिलाकर के वो बड़े आराम से 60-65-70% मार्क्स हो जाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो सी सेट का पेपर है वो जनरल स्टडीज के पेपर की तुलना में बहुत ज्यादा स्कोरर है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट, मेरे पास ऐसे भी रिकॉर्ड हैं कि जिन्होंने सी सेट में, आपको ताज्जुब होगा कि ऑलमोस्ट 90% स्कोर किया है, 88% स्कोर किया है, लेकिन जनरल स्टडीज में ऐसे ही स्टूडेंट का स्कोर 45% है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो स्कोर बहुत अच्छा हो गया और सिलेक्शन हो गया। बहुत सामान्य सी बात है कि सी सेट में उनको बहुत पूरे नंबर मिले क्योंकि वो मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, वो सब बिल्कुल कर ले रहे हैं। लेकिन जो जनरल स्टडीज है वो कंफ्यूजिंग होता है। सी सेट में जिसकी तैयारी है, जो बहुत अच्छे से जानता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो जनरल स्टडीज है उनके उत्तर उतने स्पष्ट नहीं होते। जनरल स्टडीज का पेपर हमेशा कठिन होता है। फ्रेंड, इसको आप मेंस में भी देख सकते हैं। मेंस में आप देखिए कि जो स्टूडेंट हैं वो जनरल स्टडीज के चारों पेपर में उनका स्कोर क्या होता है, जबकि ऑप्शनल में देखिए तो उनका स्कोर क्या होता है। ऑप्शनल में उनके स्कोर बहुत हाई है। ऑप्शनल में पता लगा कि उनके स्कोर 60% तक है, अगर हम ईरा सिंगल के मार्क्स देखें तो। लेकिन जनरल स्टडीज में हम देखें तो मार्क्स 45% है। इतना फर्क होता है, स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है कि जनरल स्टडीज में स्कोर कम होते हैं। और इस बार जो प्री का एग्जाम है वो पूरी तरह से जनरल स्टडीज बेस्ड हो गया है। इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता दोस्तों कि जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो 52-53% से अधिक होंगे। मैं 52-53% इसलिए कह रहा हूं कि वेरी कर जाते हैं। जैसे पिछले साल 241 कट ऑफ मार्क्स हुए, इस बार 205 है, इसमें हम 10 मार्क्स और जोड़ देते हैं, जो 15 मार्क्स जो कम कर दिए गए 385 का ही है, तो परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो 215। लेकिन फिर भी 25 नंबर का फर्क है, जो कम नहीं है, 6-7% का फर्क हो गया। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी रणनीति है, वो ये कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी हालत में आपको 55% स्कोर करना है। ये आपके मिनिमम स्कोर की रणनीति होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इतना विस्तार से मैंने आपको लॉजिकली इसको इसलिए समझाने की कोशिश की है क्योंकि जो 60% 65% 70% ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में जो स्टूडेंट होता है उसके साथ दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नंबर एक, वो बहुत तनाव में होगा, वो बहुत दबाव में होगा, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, इसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, फलाना भी कर लो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी छूट जाए, वो भी छूट जाए, इसको भी हल कर लो। वो तनाव में होगा, दबाव में होगा, नतीजा ये होगा कि उसका दिमाग बिल्कुल मत चुका होगा और चीजों के बारे में ढेर सारे कंफ्यूजन्स भी उसको होने लगेंगे। इसका नुकसान उसको एग्जामिनेशन हॉल में उठाना पड़ेगा। दूसरा जो उसके साथ जो सबसे बड़ा संकट होता है दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ये होते हैं कि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो भी उनसे मिस होने लगते हैं। तो कोशिश तो ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, लेकिन रियलिटी में वो नहीं हो पाती। और फिर अगर ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपने कर भी लिया तो उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? फ्रेंड्स, आप देखिए कि ईरा सिंघल का जो टोटल स्कोर है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, इस बार प्री का 206 है, कट ऑफ मार्क्स 205 है, केवल 206, और वो टॉप कर रही है। तो उस क्या कोई प्रभाव पड़ा उनके मेंस में इस प्री के स्कोर का? आपको सिर्फ एक रणनीति के तहत काम करना है और रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि आप 55% मार्क्स स्कोर करें, यानी कि 45% छोड़ने की गुंजाइश आपके पास है। जैसे ही आप ये प्लान करेंगे फ्रेंड्स, आपके दिमाग से तनाव दूर हो जाएगा, दबाव दूर हो जाएगा। और मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा, या कह लीजिए वार्न करना चाहूंगा, कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग तनाव में, दबाव में आया, तो निश्चित जानिए कि आप वहां गलती करके आएंगे ही आएंगे। फ्रेंड्स, पेपर कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कट ऑफ मार्क्स से कम हो जाएंगे, ये 205 की जगह 150 रह जाएंगे, डजंट मैटर। मान करके चलिए कि अगर आपके लिए कठिन है तो दूसरे के लिए कठिन है, दूसरे के लिए भी कठिन होगा। और आप अपने दिमाग की स्थिरता और संतुलन को लगातार बनाए रखें, वहां इस चुनौती का सामना करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, सबके लिए है, सिलेक्शन है। तो इसमें अगर कठिन है तो सबके लिए, सरल है तो केवल आपके लिए नहीं, फिर खुश होने का भी कोई कारण नहीं है। तब आप दुखी होइए जब सरल प्रश्न भी आपसे नहीं बन रहे हैं। और सरल प्रश्न भी फ्रेंड्स तभी नहीं बनेंगे, दो कारण हो सकते हैं, एक तो आपने पढ़ाई नहीं की है, दूसरा कारण कि आपका दिमाग दबाव और तनाव में है। इसीलिए रणनीति बहुत जरूरी है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों कि रणनीति होनी चाहिए कि मुझे 55% मार्क्स लाना है, यानी कि मेरे पास 45% छोड़ने की गुंजाइश है, राइट फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि आप एक महीने में जो आपका वक्त बचा हुआ है, अब आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने पूरे सिलेबस को या क्वेश्चन पेपर को जो अनसॉल्व्ड पेपर, तीन भागों में बांट दीजिए। पहला भाग जो बहुत कठिन है, आपसे बनते ही नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप कॉमर्स के या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस के बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत कठिन होते हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन यहां मैं फिर से दोहरा रहा हूं ताकि वो एक ही जगह पर कंप्लीट आपको जानकारियां मिल सके। छोड़ दीजिए साइंस, साइंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, चलिए 100 में 30% कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ये नहीं कहता कि 30% पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि इस 30, अब मान लीजिए कि टोटल 30 क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं, इसके आंकड़े भी हम लोगों के पास हैं और इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी पहले की है। 2014 में 33 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2013 में 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, हम मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इन 30 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर साइंस पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ नहीं भी है तो आप 6-7 क्वेश्चन आराम से हल कर लेते हैं, खासकर जो बॉटनी से संबंधित होते हैं, जो हेल्थ से संबंधित होते हैं, कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स के भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, 6-7 आप कर लेंगे, बाकी 20 छूट रहे तो छूट जाने दीजिए। अब आप उसकी तैयारी मत कीजिए, क्योंकि देखिए उसमें आप तैयारी करेंगे वक्त बहुत लगेगा, लेकिन आउटकम उसी के समानांतर आपको नहीं मिलेगा, उसी अनुपात में आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं, अब एक महीने का चूंकि वक्त बचा है इसलिए उसको छोड़ दीजिए। साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको हिस्ट्री का कोई पोर्शन बहुत कठिन लग सकता है या कुछ और इकोनॉमिक्स बहुत कठिन लग सकता है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि फिर वो साइंस में अच्छा स्कोर करें। और वो साइंस में अच्छा स्कोर करेंगे ही, क्योंकि वो साइंस में कहां उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और यहां वो साइंस का जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो साइंस में तो उनके स्कोर आराम से 80-90% होते हैं। और ठीक यही फायदा आर्ट्स वाले स्टूडेंट को मिलता है, उनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, तो इस तरह से वो सेम प्लेइंग लेवल हो जाता है। साइंस वालों को वहां फायदा मिलता है तो यहां नुकसान हो जाता है, आर्ट्स वालों को यहां फायदा मिलता है तो साइंस वाले में नुकसान हो जाता है, तो स्ट्रेटजी आपको वो बनानी होगी। फ्रेंड्स, तो कठिन वालों को अब छोड़ दीजिए। दूसरा है कि जो सरल क्वेश्चन है उनके साथ क्या करें, सरल वालों को भी छोड़ दीजिए। अब सरल वालों में ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, उसके साथ ज्यादा समय मत गुजारिए। जो मध्यम श्रेणी के हैं, जो दूसरों के विषय हैं, कह लीजिए मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ था या आपने हिंदी लिटरेचर लिया हुआ था और आपने हिस्ट्री ली हुई थी, तो अब आपके लिए भूगोल छूट रहा है, अब आपके लिए इकोनॉमिक्स छूट रहा है, तो ये मध्यम श्रेणी के हैं, तो आपको इन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जो मिडिल में है, जिनमें कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, कुछ पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे जो सब्जेक्ट आपके हैं, और ये सबके अलग अलग होंगे मित्रों, ये आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा आपको कैसे पकड़ करके चलना है। तो जो अब आपका जो जोर होना चाहिए एक महीने की तो तैयारी के लिए, वो होना चाहिए मिडिल लेवल के क्वेश्चन, मिडिल लेवल के सब्जेक्ट पर, ताकि आप उसको अपने सरल वाले में धीरे धीरे शामिल कर लें। मान लीजिए कि मिडिल वाले ऐसे जिसमें आप 50% बना पा रहे हैं, तो अगर आप इस सब्जेक्ट पर जरा सा जोर देने लगेंगे तो इसी को देखेंगे कि आप 50% की जगह 65-70% बना लेंगे। जो आपके अपने सब्जेक्ट हैं उसमें आप 80% तक स्कोर कर लेंगे, 80-90% स्कोर कर लेंगे। जो मिडिल वाले हैं इसमें आप अगर अच्छी तैयारी अभी जोड़ दे देंगे एक महीने में, क्यों आपके दिमाग में ताजी ये बातें रहेंगी, तो आप इसमें 70% तक स्कोर कर लेंगे, 65-70% तक स्कोर कर लेंगे। जो कठिन वाला जो हिस्सा है उसमें हम मान करके चलते हैं कि लगभग 15-20% स्कोर कर लेंगे, और आप देखेंगे कि जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका जो टोटल स्कोर है वो लगभग आप देखेंगे कि 55-60% के आसपास पहुंच जाएगा और आपकी रणनीति पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहली बात ये है। दूसरी बात मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, और अगर आप क्लास नोट्स देखेंगे तो वो नोट्स आपको प्रोवाइड भी किए गए हैं, उसमें 2011 से लेकर के 2014 तक के क्वेश्चंस की एनालिसिस है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आपको उसमें देखकर अच्छा लगेगा कि जो चार सब्जेक्ट हैं उसमें किसी भी साल 60% से कम क्वेश्चंस नहीं पूछे गए चार सब्जेक्ट्स को मिलाकर। क्लासेज में भी मैंने बहुत इसमें डिटेल में आप लोगों से बात की थी, लेकिन यहां मैं उन्हें दोहरा देता हूं। उसमें एक है भूगोल, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है राजनीति विज्ञान जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और चौथा है हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर से बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन हमने हिस्ट्री में उसको जोड़ दिया है। अगर इनको आप मिला देंगे तो कोई भी साल ऐसा नहीं है जब इन पर 60% से कम क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि इन सब्जेक्ट्स पर आपको अपनी बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छी तैयारी करनी चाहिए का मतलब क्या है? सच बात तो यह है कि आपकी इन पर अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, मैं ये मानकर चलता हूं। फ्रेंड्स, आपने महसूस किया होगा कि जब आप यहां 15 दिन की क्लासेस में आए थे तो सबसे ज्यादा जोर हम लोगों ने इन्हीं चार सब्जेक्ट की बेसिक्स पर दिया था। इसलिए नहीं कि ये प्रीलिम्स में ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बल्कि इसलिए कि इनका रोल मेंस में भी सबसे ज्यादा है और इंटरव्यू में भी इन्हीं सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं सेक्शन से पूछे जाते हैं, स्वाभाविक है। तो मैं आप लोगों से तैयारी करने की रणनीति के तहत एक सलाह दूंगा फ्रेंड्स, कि जो क्लासेस में जो आपको बेसिक्स बताई गई थी आप उनको याद करने की कोशिश करें, क्लास के नोट्स निकालें और आप उन नोट्स को एक बार मन ही मन में दोहराएं। आप देखेंगे कि बेसिक्स के आधार पर आप कितने सारे क्वेश्चंस को हल कर ले रहे हैं। कम से कम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस, ये मैंने चार सेक्शंस आपको बताए हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो अधिनियम वाला जो हिस्सा है उसकी पूरी आपको डिटेल्स दी गई हैं। फ्रीडम मूवमेंट का पूरा आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है कि इस तरीके से चार्ट है। ज्योग्राफी का तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड की गई हैं। इंडियन इंडस्ट्री का सिनेरियो है, इंडियन एग्रीकल्चर का सिनेरियो है, इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो है, इकोनॉमी के हमारे मूलभूत चरित्र क्या है उसका सिनेरियो है, और फिर ज्योग्राफी के पूरे वर्ल्ड को कैसे डिवाइड किया गया और उनके क्या क्या चरित्र हुए हैं। वो बड़े खूबसूरत नोट्स हैं, उनको आप ऐसे ही ले जाकर के मत बंद करके रख दीजिए, वो बेसिक्स हैं। और यदि आप उन बेसिक्स को एक बार समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज के पेपर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से ऑलमोस्ट लगभग 70% क्वेश्चंस आप केवल बेसिक्स के आधार पर हल कर लेंगे। मैं ये बात मैं केवल उसी आधार पर नहीं कह रहा हूं कि मैंने प्रोवाइड किए, सच पूछे तो वो नोट्स बनाए ही उसी आधार पर गए जिस आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों। जैसे फ्रेंड्स, एक सिंपल से दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से, कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, आप खुद सोच लीजिए कि किसमें होगी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो अधिकार होते हैं वो केवल संसद में होते हैं, कौन बढ़ा सकेगा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खुद बढ़ा नहीं सकते, सरकार बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि सरकार को अगर ये अधिकार दे दिया जाए कि उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए, ट्रांसफर कर दिए जाए, तो आपको नहीं लगता कि सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा न्यायालय में, न्यायालय की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी? तो कौन बढ़ा सकेगी? संसद, क्योंकि संसद सुप्रीम है। इसमें अल्टरनेटिव क्या दिए हैं? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति मतलब सरकार ही होता है। अगर भारत का राष्ट्रपति संख्या बढ़ा घटा सकता है, इसका मतलब है सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर, कैबिनेट, और कैबिनेट कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्री। संसद, डेफिनेटली संसद। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, उसको इतने अधिकार नहीं दिए जा सकते कि वो किसी को कुछ भी बना दे और संख्या बढ़ा ले, कम कर दे। विधि आयोग, सवाल ही नहीं पैदा होता, मिनिस्ट्रीज को ये पावर नहीं होती, संख्या बढ़ाने के अधिकार नहीं होते। संविधान के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, सारी चीजें संवैधानिक है, तो संसद उसको करेगी। सिंपल सी चीज है। एक और क्वेश्चन लीजिए फ्रेंड्स कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मतलब केंद्र और राज्य में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, और वो तो मालूम है आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा है, हाई कोर्ट में जा नहीं सकती, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य का राज्य के तरफ, मतलब ऐसा नहीं कि उसका पक्ष लेगी, लेकिन वो राज्य में है, और केंद्र सरकार जहां है तो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो सीधे जाएगा तो परामर्शी अधिकारिता, परामर्श तो है नहीं, वो तो झगड़े का निपटारा है, निर्णय देना है। परामर्श तो तब होता जब राष्ट्रपति बुला करके किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श लेते, एडवाइस लेते, ये नहीं हो सकता। अपीली अधिकारिता, अपील नहीं हो सकता। कौन अपील करेगा? क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी या केंद्र सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अपील तो तब की जाए ना जब किसी ने पहले फैसला दे दिया हो। हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकता तो अपील कैसे होगा, प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बाद मूल अधिकारिता, मतलब जो सच पूछे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका जो रियल पावर है, जिसको आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, सिंपल सी बात है, यही होगा। और फिर रिट अधिकारिता के अंतर्गत, रिट तो हो ही नहीं सकता, रिट तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से करता, जब तक सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप क्यों करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप भी करेगी तो पीआईएल के जरिए करेगी। तो अब आप देखें कि अगर आपको ये मालूम है कि सच में केंद्र और राज्यों के जब टकराव होगा तो उसका निपटारा कैसे हो सकता है, तो आप इसका उत्तर बड़े आराम से दे लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये कि प्लीज उन बेसिक्स को फिर से देखें, फिर से समझें और उस पर खूब ध्यान दें, खूब उस पर सोचें, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी बहुत अच्छी तैयारी इन चारों सब्जेक्ट्स की हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलना है, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। पूरे पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले नंबर से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और जो आपको परफेक्ट लगते हैं उनको सॉल्व करते चलिए, अटकिए मत, और जो कठिन लगते हैं, डाउटफुल लगते हैं, उसमें हल्का सा साइड में पेंसिल से निशान लगा दीजिए, ताकि दूसरे बार आपको उसमें उसको ढूंढना न पड़े, और आप आगे बढ़ते चले जाइए। एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, अब आपने जो निशान लगाए हैं, जो अभी जो छूट गए थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दो में जो कंफ्यूजन हो रहे हैं आप उनको आप सॉल्व कीजिए फटाफट, क्योंकि टाइम का प्रेशर आपके पास होता है, और उनको मिटाते जाइए। अब जो बच गए हैं उसमें आपको या तो तीन में कंफ्यूजन होगा या चार में कंफ्यूजन होगा। दोस्तों, चार में जिनमें कंफ्यूजन है उसको तो भूल ही जाइए, क्योंकि 45% आपको छोड़ने की गुंजाइश है। जिनमें तीन में कंफ्यूजन है उसको कोशिश कीजिए कि वो दो रह जाएं, और दो रह जाएं तो किसी में भी एक में लगा लीजिए, और यदि तीनों हो तो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लगभग स्थिति बराबर ही रहेगी, तो बेहतर है कि उसको छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तीन जहां तक कंफ्यूजन में रहते हैं उनको भी छोड़ दीजिए, चार वालों को आप छोड़ ही देंगे, तीन वालों को भी छोड़ दीजिए, दो वालों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दो में आपके जो सब सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, और अगर गलत हो गए तो आपके नंबर 33% कटेंगे, तो गणित की दृष्टि से आपकी उसमें स्थिति बेहतर ही रहेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अंत में, अभी जो एक महीने का समय है, ज्यादा समय प्रैक्टिस को दें, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका दिमाग एक्टिवेट होगा और वो उन चीजों को उस तरीके से देखना और समझना शुरू कर देगा, मतलब दिमाग की एक आदत पड़ जाएगी कि जटिलताओं के बीच से कैसे रास्ता निकाला जाता है। जैसे कि फुटबॉल का खिलाड़ी अपने फुटबॉल को अपने पास रखता है और कई खिलाड़ियों के बीच से डबलिंग करते हुए, आपने देखा ना, कैरी करते हुए उस बॉल को निकाल लेता है, तो वो दिमाग की आदत होती है। तो एक महीने तक आप अपने दिमाग को आदत डालिए, कोशिश कीजिए कि रोज 50 से 100 क्वेश्चन आप हल करें। फ्रेंड्स, आप सबको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत डालिए, पूरी नींद लीजिए, क्योंकि नींद की कमी कितना खतरनाक हो सकती है ये आपने अपर्णा के लेटर से जो आपके नॉलेज सेंटर में डला हुआ है देख चुके हैं। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, दिमाग पर बिल्कुल भी तनाव न रखें, खुश मन से प्रीलिम्स के लिए पेपर के लिए जाएं। मैं भुक्त भोगी रहा हूं कि पहली बार जब मैंने प्री में अपियर हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा क्लास में मैंने किस्सा बताया था कि मैंने बेवकूफी की थी कि गांव का रहने वाला लड़का और दिल्ली सेंटर रख लिया और किस तरीके से मैं तनाव में आ गया था वहां के स्टूडेंट्स को देखकर, आती हुई कारों को देख करके, और मैं नर्वस हो गया था और नतीजा यह हुआ कि मेरा पेपर ऐसे बुरी तरह से खराब हुआ कि सामान्य से सामान्य प्रश्न भी मेरे गलत हो गए। तो मित्रों, जो भी हो मन में विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने तैयारी की है, मेरे पास बेसिक समझ है और मैं उस बेसिक समझ के आधार पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आऊंगा। मेरी तैयारी किसी भी दूसरे से किसी भी मायने में कम नहीं है, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे तो उस ऊपर नीचे को एब्जॉर्व करने की बहुत बड़ी संभावना पूरी की पूरी उस सफलता वाली लिस्ट में होती है। लगभग 12,000 से 14,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं और भले ही मैं उसके लास्ट में ही क्यों ना आऊं, लेकिन मैं आऊंगा, इतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। तो अपने दिमाग में जरा भी तनाव न रखें। फ्रेंड्स, जहां तक सी सेट का सवाल है, अब वो तो क्वालिफाइंग हो गया है, उसकी तैयारी के लिए कुछ भी बताना, कुछ भी कहने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी समझ से बहुत सी बातें मैंने प्रीलिम्स के बारे में इससे पहले भी की हैं, लेकिन कुछ बातें मुझे अभी आप लोगों से और करनी थी, तो ये बातें मैंने अभी आपसे और की हैं जो पहले नहीं हो पाई थी। मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।